हरे कृष्ण। तो श्रीमद् भागवतम चौथा स्कंद अध्याय क्रमांक पहला श्लोक क्रमांक 39 मनु की पुत्रियों की वंशावली श्लोक क्रमांक 39। क्रतोरपि क्रिया भार्या वाल्खिलल्या न सूयत ऋषिण्य ऋषिष्टि सहस्राणि ज्वलतो ब्रह्मतेजसा। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री ऐसी भक्तिवेदांत संस्रूपा की क्रतु की पत्नी क्रिया ने वाल्खिल्यादि नामक 60,000 ऋषियों को जन्म दिया। ये ऋषि ब्रह्म आध्यात्मिक ज्ञान में बड़े चढ़े थे और उनका शरीर ऐसे ज्ञान से देदीपमान था, प्रकाशमान था। तात्पर्य क्रिया कर्दम मुनि की छठी पुत्री थी, उनके 60,000 ऋषियों को जन्म दिया जिन्हें वाल्खिल्य कहा जाता है क्योंकि वे गृहस्थ जीवन त्याग कर वानप्रस्थ हो गए थे। हरे हरे कृष्णा। तो यहाँ जो है मनु जो है उनके वंशावलियों का उल्लेख आ रहा है। तो यहाँ आज जो उल्लेख किया गया है जो क्रतु मुनि थे उनको जो है जो उनको जो लड़की दी गई थी जिसका नाम था क्रिया। तो क्रिया के द्वारा जो है कितने बच्चे उत्पन्न हुए थे, 60,000 ऋषि। तो वो लोग सब लोग जो है ऋषि बन गए और उनका ज्ञान इतना अपार था कि उनका ब्रह्म तेज भी आ गया था। तो उन्होंने वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार किया। यहाँ रूपा जी तात्पर्य में बताते हैं कि क्योंकि वे गृहस्थ जीवन के उपरांत वानप्रस्थ हो गए। तो रूपा जी जो है श्रीमद् भागवत में एक टीका में लिखते हैं कि इस सृष्टि की भगवान ने जो रचना की है तो बद्ध जीवों को एक मौका दिया जाता है इस भौतिक जगत में कि हम भगवत धाम वापिस जा सके। तो चैतन्य महाप्रभु बताते ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। तो यह जब इस सृष्टि की रचना होती है तो ऐसे बताया जाता है कि जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं तो यहां उल्लेख आता है कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी तो पहले चतुष्कुमारों को उन्होंने जन्म दिया था, उनको कहा था कि प्रजापति बनो और प्रजाओं की उत्पत्ति करो तो उन्होंने मना कर दिया। उसके पश्चात उनको क्रोध आया तो उस वक्त जो उनके क्रोध के अनुसार क्या हो गया कि शिवजी का जन्म हुआ। तो शिवजी जो है वो सब कुछ नाश करने लग गए तो उन्होंने उनको शांत कर दिया, बोला साइड में बैठ जाओ। तो उसके पश्चात जो है उल्लेख आता है कि स्वयं ब्रह्मा जी ने जो है अपने शरीर से जो है 10 ऋषि मुनियों को उत्पन्न किया जिसमें नारद जी का नंबर लास्ट में आता है। तो ये ब्रह्मा जी ने जो है ये 10 ऋषि मुनियों को जो उत्पन्न किया था उनका नाम आपको बताते हैं मारीचि। जैसे आप लोग कहीं भी यहां जाते हैं मंदिर में तो आप लोगों को खास करके जगन्नाथपुरी जाएंगे तो क्या बताना पड़ता है, हाँ हाँ गोत्र। तो ये जितने भी ऋषि हैं तो हम लोग जब भी जाते हैं तो हमें कौन सा गोत्र बताना चाहिए, इसको हम लोगों को कौन सा गोत्र बताना चाहिए, किसी को मालूम है? हाँ वासुदेव गोत्र, कौन सा? अच्युत। हाँ अच्युत नहीं तो वासुदेव भी चलता। तो यहाँ जो है इन ऋषियों के द्वारा प्रजा की सृष्टि की गई थी। तो अभी अत्रि अंगिर पुलस्य पुलह क्रतु भृगु वैशिष्ट दक्ष, दक्ष भी प्रजापति है हालांकि वो ग्रस्त थे। फिर दसवां जो पुत्र बताया था कि नारद मुनि, उनका जो दसवें पुत्र के रूप में ब्रह्मा जी के शरीर के अलग अलग अंगों से इनका जन्म हो गया। तो बताया था कि नारद मुनि जो है ब्रह्मा जी के ध्यान से उनका जन्म हुआ था जो कि शरीर का अच्छा अंग माना जाता है हृदय। फिर वैशिष्ट उनका जन्म हुआ था उनके सांस से। फिर दक्ष का जो जन्म हुआ था अंगूठे से। भृगु का जो है उनके जो है स्पर्श से जन्म हुआ था। और यहां क्रतु का भी उल्लेख आता है कि क्रतु का जन्म जो है उनके हाथ से जन्म हुआ था। तो ये भागवतम में रूपा जी एक तात्पर्य में लिखते हैं। तो आगे उल्लेख आता है जैसे मैत्र ऋषि जो है उनको जब ये ब्रह्मा जी बता के जाते कि आप जो है कदम मुनि को बताते कि आप देहावती से शादी कर लो फिर शादी के पश्चात जो है जब ये देहावत से कितने पुत्रियों का उत्पन्न हुआ, किसी को मालूम है? आप लोग डेली कथा सुनते हैं। हाँ, नौ नौ पुत्रियों का जब ये जन्म हुआ, जब वो बड़े हुए तो उनके लिए वर कोई ना कोई चाहिए, तो ब्रह्मा जी जो है स्वयं आके उनको कर्दम मुनि से वो बताते हैं कि आप जो है जितने भी नौ कन्या है आप उनका जो है विवाह जो है यहाँ, अभी किनका विवाह किससे हुआ अभी आप लोगों ने सुना होगा आज तक, किसी को मालूम है? तो ये मालूम होना जरूरी है, नहीं तो यहाँ का वहां जोड़ देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ चलो ठीक है, तो अभी फिर से आप लोगों को हम दोहराते हैं। यहाँ तो यहाँ बताया जाता है कि कर्दम मुनि जो है उन्होंने अपने जो नौ पुत्रियां थी उनका विवाह सबसे पहले जो कला जो लड़की थी पहली, उसका जो है मारीची, हाँ मारीची जो है उनसे उनका विवाह हो गया। अनुसुईया आप लोगों ने सुना होगा, अत्रि ऋषि। फिर श्रद्धा जो है उनका अंगिरा ऋषि। फिर हरिभाव जो है उनका पुलस्त्य मुनि से हुआ। फिर गति जो है लड़की जो थी उनका पुलह ऋषि। फिर क्रिया जो है अभी जो उल्लेख आ रहा है उनका किसके साथ हुआ? क्रतु। आज का उल्लेख है क्रिया और क्रतु, ठीक है। फिर ख्याति जो है उनका भृगु, भृगु मुनि मालूम है जिनका जो दक्ष यज्ञ में, चलो आप लोग जानते हैं। फिर आगे जो है अरुणाधति, किसको मालूम है? अरुणाधति का हाँ वैशिष्ट ऋषि से जन्म शादी हुआ। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ जो है कर्दम मुनि जो है उनका जो है नौ कन्याओं का जो विवाह हो गया। तो नारद मुनि जो है अभी एक नारद मुनि का भी एक उल्लेख आता है, जो नारद मुनि श्रीमद् भागवत में उल्लेख आता है, राजा प्रचिनी भार्षित उनके साथ एक वाद संवाद करते हैं, ये 29वें अध्याय में आएगा चौथे स्कंद में। तो वहां नारद मुनि वो उल्लेख करते हैं कि किस प्रकार उनके पिताजी ब्रह्मा जो है उन्होंने इस सृष्टि का निर्माण किया, और उस वक्त जब उन्होंने निर्माण किया तो बताते हैं कि किन किन को उन्होंने जन्म दिया। तो उसमें बताते कि उन्होंने शिवजी को चार कुमारों को, फिर मरीचि अत्रि अंगिर पुलस्य पुलह क्रतु भृगु और वैशिष्ट और नारद जी का जन्म हुआ। ये नारद जी यहाँ बता रहे, तो नारद जी बता रहे कि यहाँ हालांकि हम लोग पूरे वेद ग्रंथों को शास्त्रों को जानते हैं लेकिन फिर भी भगवान को समझना इतना आसान नहीं है, भगवान को समझना इतना आसान नहीं। तो फिर आगे उल्लेख आता है कि जब युधिष्ठिर महाराज वो ये कर रहे थे, कौन सा यज्ञ कर रहे थे महाभारत के युद्ध से पहले? हाँ अश्वमेध यज्ञ। तो उसके दौरान भी जो है विश्वामित्र ने काफी ऋषियों को बुलाया था, उस लिस्ट में भी जो है क्रतु उनका नाम आता है। तो उसमें उन्होंने व्यासदेव जी को बुलाया था, भारद्वाज, समंतु, गौतम, असित, वैशिष्ट, चावण्य, कन्व, मैत्रेय, फिर ऐसे काफी लंबा लिस्ट है। तो इसमें भी जो है बताया जाता है कि क्रतु मुनि इनको भी जो है बुलाया गया था। तो अभी यहाँ जैसे आज जो है इसमें तात्पर्य में प्रभुपाद जी जो दोहराते हैं वानप्रस्थ के बारे में, तो कुछ प्रयास करेंगे क्योंकि प्रभुपाद जी ने वानप्रस्थ के ऊपर भी काफी जोर दिया है। तो प्रभुपाद जी बताते थे कि इस्कॉन का जो दूसरा जो ये है फेज, हाँ वो है वानप्रस्थ। जैसे हमें एक फार्म कमिटी होना चाहिए, वहां वर्ण और आश्रम के अनुसार हमें अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो भगवद गीता में भी कृष्ण भगवान बताते हैं चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागस्य। तो चार वर्ण है, चार आश्रम है। तो चार वर्ण आप लोग जानते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और चार आश्रम है ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, उसके पश्चात संन्यास। तो इतर युगों में लोग जो है इसका पालन करते थे लेकिन कलयुग में कलौ शूद्र संभव। तो वानप्रस्थ का अर्थ होता है कि एक व्यक्ति जो अपने पत्नी के साथ वन में प्रवेश करता है उसका डेफिनेशन यह है वानप्रस्थ, अपने घर को त्याग देता है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमें मालूम होना चाहिए कि एक व्यक्ति को जबरदस्ती घर छोड़ना पड़ता है, नहीं तो घर की आसक्ति उसको बनी रहेगी। एक व्यक्ति कोई भी शरीर में है तो उस आसक्ति में से बाहर आना इतना आसान नहीं है। जैसे एक बार जो है गौतम ऋषि ने जो है उनको श्राप दिया था, किसको श्राप दिया था? अहिल्या को नहीं, उनकी पत्नी थी लेकिन उनको छेड़ने के लिए कौन आया था? हाँ इंद्र आया था, तो इंद्र को भी उन्होंने श्राप दिया था कि आप सुअर बन जाओ। हाँ भैया, लेकिन ब्रह्मा जी ने देखा कि इंद्र का पोस्ट खाली पड़ा हुआ है, तो ब्रह्मा जी ने जो है नारद जी से कहा, अरे जाके इंद्र को ले आओ, और कहीं गांव में सुअर बने हैं और वो आनंद ले रहे वहां, उनको जाके सब थोड़ा समझाओ। तो उस वक्त जो है इंद्र ने कहा, अरे मेरी इतना बड़ा मेरा समाज है, तो मैं इसको कैसे त्याग सकता हूँ, छोटे बड़े मोटे बच्चे हैं, इतनी मेरी सारी पत्नियां हैं, कैसे मैं छोड़ सकता हूँ। तो ऐसे प्रभुपाद जी बताते कि एक विष्टा में से कीड़े को निकाल, उसको कह दो आपको हमने मुक्त कर दिया, लेकिन फिर भी वो कीड़ा कहाँ चला जाएगा, उसी विष्टा में चला जाएगा। तो इस भौतिक जगत में हमें मालूम होना चाहिए कि एक व्यक्ति को अपने परिवार, समाज, देश के प्रति काफी आसक्ति होती है, तो इस आसक्ति को काटना इतना आसान नहीं है। हालांकि कुंती महारानी बताती है, जब कृष्ण भगवान जो है द्वारका के लिए रवाना हो रहे थे, तो उस वक्त कुंती महारानी अपने दिल की बात बताती है। वो बताती है कि देखो ये जो है अपने परिवार का संबंध, इसको काटना, वो बताती है हृदय की ग्रंथि के गांठ के समान है, तो इस गांठ को जो है तोड़ना इतना आसान नहीं है। हालांकि गोपियां भी जो है कृष्ण भगवान को बताती है, कृष्ण गोपी गीत में भी उल्लेख आता है कि गोपियां भी बताती कि देखो कि ये घर का जो संबंध तोड़ना इतना आसान नहीं, लेकिन उसको भी हमने तोड़ दिया आपके लिए, कृष्ण भगवान के लिए, वो बताती है। हालांकि जब ये आए थे वृंदावन में गोपियों को समझाने के लिए, कौन आए थे, उद्धव जी, तो उद्धव जी भी जब उन्होंने भगवान से प्रार्थना की एक घास का तिनका बनने में, तो वो भी भगवान से कहते कि देखो गोपियां जो है उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था, अपना घर परिवार समाज सब कुछ, तो इतना आसान नहीं है ये घर को त्यागना। तो लेकिन प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक व्यक्ति को, जैसे भरत महाराज का उल्लेख आता है, जब भी भरत महाराज ने अपना घर त्याग दिया था, तो आप लोग डेली सुबह, आजकल तो घर के अंदर सब लोग छोड़ते हैं, सुबह लोटा लेके जाते हैं गांव में, है कि नहीं, तो जब भी अपना कार्य कर लेते तो आप पीछे मुड़ के देखते क्या, कितना आपने छोड़ा है वजनदार, जो भी रंग है, नहीं, क्योंकि वो गंदगी है। तो भरत महाराज ने जब भी अपना घर संसार त्याग दिया था, तो उन्होंने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। तो थोड़े चीज ऐसे है, जैसे एक व्यक्ति को गुरु स्वीकार करना, ये भी एक कंपल्सरी, एक व्यक्ति को आवश्यक बताया गया है। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बताया था, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवयम्। तो शास्त्रों में उल्लेख आता है कि एक व्यक्ति को आवश्यक है कि एक गुरु को स्वीकार करना, तो एक व्यक्ति को ये भी आवश्यक बताया गया है कि एक व्यक्ति को वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार करना है, ये भी इसका जो है आवश्यकता है, ये भी शास्त्र में उल्लेख आता है कि एक व्यक्ति को वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार करना है वॉलेंटरली। तो ये स्त्रियों को उसका उल्लेख नहीं आता है, सिर्फ जो है पुरुषों को बताया जाता है कि पहले पत्नी अपने पति के साथ जाएगी, और पति और पत्नी वो लोग जिज्ञासा करेंगे एक जो है सन्यासी से, तो व्यक्ति उस सन्यासी से ट्रेनिंग लेगा, फिर उसकी पत्नी अपने घर चली जाएगी, अपना बच्चों को संभालेगी, और वो पति जो है फिर वो वानप्रस्थ रहकर फिर वो आगे सन्यास ग्रहण कर लेता है। तो ये शास्त्र में ऐसे उल्लेख आता है कि एक व्यक्ति को वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि वानप्रस्थ आश्रम जो है कि एक व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को इस भौतिक जगत के बंधन से मुक्त होना है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से, तो एक व्यक्ति को 50 साल, शास्त्रों में उल्लेख आता है पंचशो ऊर्ध्वम वनम रजेत, 50 के बाद में कितना आता है, 51। वन का मतलब क्या होता है, तो उसका अर्थ है कि एक व्यक्ति को वन की तरफ प्रवेश करना चाहिए। तो ये शास्त्र तो, लेकिन आजकल कोई इतना ध्यान नहीं देता है। तो यहां उल्लेख आता है पंचशो ऊर्ध्वम वनम रजेत, तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक व्यक्ति को स्वयं अपनी तरफ से तो क्या करना चाहिए, अपना परिवार, अपना घर समाज छोड़ के उसको वन में जाना चाहिए। तो प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में लिखते हैं कि एक व्यक्ति को वन का मतलब है, वो बताते हैं वृंदावन जाना चाहिए, आप लोग काफी भाग्यशाली है वृंदावन में है। हालांकि प्रहलाद महाराज के उसमें तात्पर्य में भी बताते हैं, आगे आएगा, तो वहां भी प्रभुपाद जी बताते हैं कि वन का अर्थ होता है एक व्यक्ति को वृंदावन जाना चाहिए। तो प्रभुपाद जी बताते कि वृंदावन में कोई जंगली जानवर पशु है नहीं, वृंदावन में प्रभुपाद जी बताते कि एक व्यक्ति बहुत शीघ्र भक्ति में प्रगति कर सकता है। तो आगे बाजी बताते हैं कि सब वनों में सबसे अच्छा सुंदर वन है वृंदावन है, और वहां एक व्यक्ति को कुछ कोई पशु से कोई भय नहीं होता और एक व्यक्ति वहां वृंदावन में रह के कृष्ण भक्ति का जो है वो प्रगति कर सकता है। और इस प्रकार वो भगवान के ऊपर ध्यान करके जो है अपना शरीर त्याग करके भगवत धाम प्राप्त कर सकता है, कृष्ण को प्राप्त कर सकता है। तो ये वानप्रस्थ के आश्रम के बारे में जो है प्रहलाद महाराज ने भी जो है अपने पिताजी को कहा था। किसी को श्लोक मालूम है कौन सा श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम में सातवें स्कंद में? जब ही प्रहलाद महाराज जो है उनसे उनके पिताजी ने जिज्ञासा किया, अरे बेटा आप आज आपने क्या पढ़ा? तो तत्साधु मन्ने सूर्यवार्य देहिनाम सदा समुद्य असद गृहात हितोत्म पातम गृहम अंधकूपम वनम गतो यद धीरम आश्रयत। तो ये प्रहलाद महाराज जो है अपने पिताजी को कह रहे, अरे असुरों में श्रेष्ठ, अपने पिताजी को असुर कह के ही बुला रहे हैं, वो कह रहे कि आप असुरों में श्रेष्ठ। तो उनको वो कह रहे कि देखो आपको सब कुछ ये भौतिक संसार छोड़ के आपको कहाँ जाना चाहिए? वन में जाना चाहिए। एक ऐसा एक उल्लेख आता है कि एक बार एक कोई एक भक्त जो है एक किसी के गृहस्थी के घर में गए थे, तो उन्होंने देखा अरे तो बड़े वैरागी है। वो उनको कह रहे थे अरे आप महाराज जी आप तो बड़े वैरागी है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं हम तो वैरागी नहीं, ऐसे प्रयास कर रहे भक्ति करने का। तो उसने कहा, साधु ने कहा नहीं 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 आप बड़े वैरागी है। तो वो कहने लगे अरे हमारे पास सब कुछ इतना बड़ा घर मकान सब कुछ है, आप कैसे कह रहे आप वैरागी है? तो साधु कह रहे थे नहीं नहीं आप बड़े नहीं बड़े महावैरागी है। तो वो व्यक्ति सोच रहा था अरे मैं महावैरागी हूं? तो उसने कहा आपने कृष्ण को भी त्याग दिया इसलिए आप महावैरागी। तो भौतिक जगत में हम देखते हैं कि लोग जो है आजकल वानप्रस्थ तो छोड़ दो भगवान को भी जानते नहीं। तो यहां प्रहलाद महाराज अपने पिताजी को बता रहे कि उसमें तात्पर्य में प्रभुपाद जी जो है बता रहे कि यहां एक व्यक्ति को सब कुछ त्याग कर वन में जाना चाहिए। और प्रभुपाद जी बताते हैं उसको क्लियर मोर क्लियरली वन शुड गो टू वृंदावन। प्रभुपाद जी बताते कि एक व्यक्ति को वृंदावन जाना चाहिए और वहां कृष्ण भक्ति का जो है एक व्यक्ति को अपने हृदय में उसको ये करना चाहिए, जागृत करना चाहिए और वहां कृष्ण भगवान का आश्रय लेना चाहिए। तो अभी हमें मालूम होना चाहिए कि ये जो है शास्त्रों में उल्लेख आता है कि वानप्रस्थ का अर्थ होता है कि एक व्यक्ति ने जो भी गृहस्थ जीवन में जाने अनजाने में जो भी पाप किया है तो उसका एक प्रायश्चित करने के लिए एक व्यक्ति को वानप्रस्थ स्वीकार करना होता है, क्योंकि वो आगे उसको अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो एक व्यक्ति को सबसे पहले सब पापों से मुक्त होना चाहिए। तो प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में लिखते हैं कि एक गृहस्थी को बताया जाता है कि उसको 50 साल के बाद में पंचश ऊर्ध्वं वनम व्रजेत, तो एक व्यक्ति को वन में जाना चाहिए और तीर्थों में भ्रमण करना चाहिए अपने पत्नी के साथ अगले 25 साल तक। तो इस प्रकार उसको तीर्थों में भ्रमण करके फिर उसको जो है संन्यास जो है ग्रहण करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि वानप्रस्थ का अर्थ होता है कि एक व्यक्ति जबरदस्ती अपना घर छोड़ देता है। और इस प्रकार जो है ये शास्त्रों में उल्लेख आता है कि एक व्यक्ति को अपना घर त्याग करके वो क्या करना चाहिए कि अभी उसको मालूम है कि इस शरीर को त्यागना है तो उससे पहले उसको भगवत भक्ति या भगवान को प्राप्त करना है, भगवान के ऊपर ध्यान करना है, तो उसको ये अपना घर समाज परिवार देश ये सब कुछ उसको त्यागना पड़ेगा। तो ऐसे एक पुराण में कथा आती है, तो लोग देखते गांव में बूढ़े भी हो जाते लेकिन अपने दुकान में बैठे रहते पैसा गिनते रहते। तो ऐसे ही गांव में एक बनिया था, तो उसका जो है अनाज का दुकान था, तो बिल्कुल बूढ़ा हो गया था, दिखता भी नहीं था कुछ खास। तो उसके चार पुत्र थे, उस गांव में एक दिन एक साधु आए थे। वो कहने लगे देखो हमारे पिताजी इतने ये है आसक्त है अपने धंधे से, तो ये आज तक इन्होंने कभी एक जो है ये भी किया कहीं वो ये भी नहीं गए तीर्थ यात्रा करने के लिए। तो उस साधु को उन्होंने कहा कि आप क्या करो इनको तीर्थ यात्रा ले जाओ, जब तक इनके अंदर वैराग्य की भावना नहीं आएगी इनको गांव में मत ले आना। तो साधु उनको फिर सब जगह घुमा रहे थे भारतवर्ष में सब तीर्थों में। तो प्रभुपाद जी बताते कि जैसे भारत में सब जगह तीर्थ है, तो एक व्यक्ति ऐसे नहीं कि उसको अपना गांव छोड़ के हिमालय में जाना चाहिए, कहीं भी नजदीक का तीर्थ है वहां जा सकता है। तो ये साधु इसको जो है घुमा रहे थे सब जगह अलग अलग तीर्थों में, लेकिन इसके अंदर कुछ वैराग्य की भावना दिखाई नहीं दे रही थी। तो उसने सोचा चलो अभी इसको हम वहां इलाहाबाद मणिकरण घाट बनारस में है जहां मुर्दा जलाया जाता है, तो वहां लाइन लगती है जो मरे हुए आदमी को जलाने के लिए। तो ऐसे बताए थे कि शिवजी आके आपके कान में राम का नाम पुकारते हैं वहां, तो वो व्यक्ति उसको अंत में मणिकरण घाट लेके गए, तो वहां वो बैठे थे दोनों। और जब ये जो है जो व्यापारी था अनाज का बूढ़ा हो गया था, देख रहा था बड़े आंख खोल के कि किस प्रकार लाश जल रहे, तो साधु ने पूछा अभी कैसे लगता है आपको, कुछ साक्षात्कार हो रहा है क्या? तो उसने देखा इसके आंखों से कुछ अश्रु टपक रहे एक दो, कोई वैराग्य के अश्रु नहीं थे वो, कुछ दुख के अश्रु थे। तो उसने कहा कि अरे देखो मैंने पूरा मेरा जिंदगी जो है ये अनाज बेचने में निकाला और मैंने कुछ खास कमाया भी नहीं, मेरा एक छोटा सा घर है यहाँ, देखो हम लोग पूरा जंगल में भ्रमण कर रहे थे, यहाँ लकड़ी का देखो कितना डिमांड है, अगर मैं लकड़ी बेचता तो पता नहीं करोड़पति बन गया होता। तो उसके अंदर कोई वैराग्य की भावना आई नहीं, तो क्योंकि उसने बचपन से कोई भक्ति किया ही नहीं। तो वानप्रस्थ इसलिए बताया जाता है कि कम से कम जो है हमारे अंदर वैराग्य की भावना आ जाए धीरे धीरे। तो साधु ने देखा अरे चलो ये तो एकदम सुपर फ्लॉप है। तो इस प्रकार भौतिक जगत में जो वैराग्य की भावना लाना इतना आसान नहीं है। तो भागवतम में पहले स्कंद में जो है धृतराष्ट्र, ये तो एक सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल है धृतराष्ट्र। हालांकि धृतराष्ट्र के 100 पुत्र मर गए थे महाभारत के युद्ध में, उसके पश्चात भी जो है वो वहां हस्तिनापुर में राजगद्दी में बैठता था और राजवेश डालता था। तो जब भी विदुर को जब उनको पता चला कि अभी भी धृतराष्ट्र जो है वो अपने गद्दी के लिए आसक्त है, तो विदुर जी आए, जैसे कहते हैं हिंदी में लातों के गधे बातों से नहीं मानते या बातों के गधे लातों से नहीं मानते हैं। तो उन्होंने आके जो है उनको अच्छी तरह जो है एक ऐसी बुरी तरह बता दिया कि अभी विदुर जी जो कहते हैं कि उसमें भागवतम में उल्लेख आता है वो बताते एवं गृहेशु आसक्तानाम, वो बताते प्रमत्तम तद यहाय अत्यक्रमाद अविज्ञात काल पुरह दुष्तर। वो बताते कि देखो कि ये समय आपका पीछा कर रहा है, आपके अंदर बुढ़ापा आ गया और आपके गले से जो गुरगुर वो ऐसी एक आवाज आ रही है, और आप जो है अपने धन अपना ऐश्वर्य अपने घर संपत्ति कितने लालची है, तो आपके ऊपर जो है वो खेद है, ये आपको अभी त्यागना चाहिए, आपकी कभी भी मृत्यु हो सकती है। वो बताते हैं कि देखो अहो महिष्यामि जंतोर जीवतस्य यह भवान भीमापोर्जितम पिंडम आदत्य गृह पालवत। वो बताते हैं देखो आप जो है यहाँ एक ऐसी इच्छा लगा के बैठे हैं कि लेकिन आपको क्या मिल रहा है, भीम का वो बचा हुआ टुकड़ा मिल रहा है खाने के लिए, और एक जो घर में एक कुत्ता रहता है घर का कुत्ता, आप एक घर के कुत्ते के समान है। तो जब ही विदुर जी ने ऐसे उनको बड़े कठोर से बता दिया तो तब उनके अंदर एक वैराग्य की भावना आई धृतराष्ट्र के अंदर, तभी उन्होंने सोचा चलो अभी हाई टाइम कहते ना अभी मुझे घर त्यागना चाहिए। तब जाके तो रूपा जी तात्पर्य बताते कि एक साधु को जो है किसी को ज्यादा क्या कहते हैं उसको उस मस्का नहीं मारे क्या कहते हिंदी में, ज्यादा उसको गृहस्थ जीवन का प्रेरणा नहीं देना चाहिए, उसको यानी एक जो सच्चाई है वो बताना चाहिए। तो उसको जो एक साधु को जो है एक जो है जो सच्चाई है वो उसको बताना चाहिए। तो इस प्रकार हमें मालूम होना चाहिए कि एक व्यक्ति को वास्तविक में जो है शास्त्रों में उल्लेख आता है कि प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो वैदिक सिविलाइजेशन, तो उसमें एक व्यक्ति को बताया जाता है कि एक व्यक्ति को अगर इस भौतिक जगत के बंधन से दूर होना है तो उसको स्वयं अपनी तरफ से जो है घर को छोड़ना चाहिए, जैसे ऋषभदेव का भी उल्लेख आता है। तो ऋषभदेव के भी 100 पुत्र थे, तो उनको ऋषभदेव वो बताते नाहम देह देह भाजो नरलोक कष्टान कामान अर्हते तपो दिव्यम पुत्र का ये न शुद्ध यद यस्मात ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। तो ऋषभदेव अपने पुत्रों को बता रहे कि देखो जिसको ये मनुष्य जन्म मिला है तो उसको शुकर या कुकर के मापी दिन रात परिश्रम नहीं करना चाहिए, तो एक व्यक्ति को ब्रह्म जिज्ञासा करना चाहिए और इस प्रकार एक व्यक्ति को तपस्या करना चाहिए, उसके पश्चात एक व्यक्ति का हृदय साफ हो जाता है, उसके पश्चात जो एक व्यक्ति जो है आध्यात्मिक एक जीवन प्राप्त कर सकता है और उसमें एक सच्चा आनंद है। तो श्रीमद् भागवतम में एक उल्लेख आता है जिस व्यक्ति ने अपना घर स्वयं उन्होंने त्याग दिया, कोई बता सकते हैं वॉलेंटरली किसी के बिना बताए? ऐसे तो बहुत उल्लेख आते हैं, बहुत सारे राज ऋषि है जिन्होंने अपना घर त्याग दिया, भरत महाराज है, युधिष्ठिर महाराज है, तो कोई बता सकता है कोई एक मुनि जो थे उन्होंने अपना घर त्याग दिया? श्रीमद् भागवतम में उल्लेख आता है एक, हाँ कर्दम मुनि, अभी उनका ही चलने वाला है चरित्र। तो कर्दम मुनि जो है, तो वहां तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कर्दम मुनि के घर में भगवान का जन्म हुआ था। कपिल देव जो है वो भगवान के अवतार है, शक्तावेश अवतार है। तो फिर जो है कर्दम मुनि को घर छोड़ने की क्या जरूरत है, उनको तो भगवान प्राप्त हो गए, कोई बता सकता है क्यों उन्होंने घर छोड़ा? कर्दम मुनि जो है उनको घर छोड़ने की क्या जरूरत है, अगर समझो आपके घर में आके भगवान रहने लग गए। जैसे युधिष्ठिर महाराज जब राज कर रहे थे तो उनको जो है नारद मुनि बताते हैं, देखो आपका क्या अहोभाग्य है कि आपके यहाँ कृष्ण भगवान रहते हैं, तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि साधु ये लोग आपका दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, वो तो भगवान का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। तो जब भी कृष्ण भगवान आपके घर में है तो आपको घर छोड़ने की क्या जरूरी है? लेकिन कर्दम मुनि जो है वो एक जो है यदि आश्रित श्रेष्ठ तत्त एवेतर जना, लेकिन हम लोग फिर कह सकते थे कर्दम मुनि ने घर नहीं छोड़ा था, हम क्यों छोड़े हैं कि नहीं? तो हमें किस प्रकार आचरण करना चाहिए ये दिखाने के लिए कर्दम मुनि ने अपना घर त्याग दिया था। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक सही आचरण दिखाने के लिए कर्दम मुनि ने क्या किया, हालांकि उनके घर में भगवान का जन्म हुआ लेकिन कर्दम मुनि ने पहले निश्चित किया था कि वो घर त्याग देंगे कुछ समय के पश्चात। तो जब ये कपिल देव का जन्म हुआ तो उसके पश्चात कर्दम मुनि ने जो है वो क्या कर दिया, अपना घर त्याग दिया। तो श्रीमद् भागवतम में बहुत सारे उल्लेख आते हैं राजाओं के, राज ऋषि जिन्होंने अपना घर त्याग दिया। तो प्रभुपाद जी जो है उनका भी जीवन में हम लोग देखते हैं कि प्रभुपाद जी जब भी अपना गृहस्थ जीवन में थे तो प्रभुपाद जी अपने काफी इसमें लेक्चरों में बताते हैं कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती उनके गुरु महाराज उनके सपने में आते थे, वो कहते थे अभी घर त्याग दो, संन्यास आश्रम ग्रहण करो। तो प्रभुपाद जी ने अपने 54 साल में प्रभुपाद जी ने क्या किया, अपना घर त्याग दिया और प्रभुपाद जी वृंदावन आ गए। और प्रभुपाद जी ने वृंदावन में क्या किया, श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता का उन्होंने टीका लिखा था। तो प्रभुपाद जी हम देखते हैं कि उन्होंने भी जो है अपना घर त्याग दिया और वृंदावन में आके जो है उन्होंने भागवतम गीता का टीका लिखने के पश्चात फिर प्रभुपाद जी अमेरिका गए। तो प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में लिखते वास्ते वानप्रस्थ धर्म, तो ये भी एक प्रकार का एक धर्म है वानप्रस्थ धर्म, जैसे ब्रह्मचार्य धर्म, फिर जो है गृहस्थ धर्म, फिर उसके बाद में एक वानप्रस्थ धर्म भी आता है संन्यास धर्म। तो वानप्रस्थ धर्म प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक व्यक्ति को 50 साल के पश्चात वन में जाना चाहिए और उसको किसी का आश्रय भगवान के अलावा और किसी का आश्रय नहीं लेना चाहिए। तो इस प्रकार एक व्यक्ति जो है उसको बिल्कुल भगवान के ऊपर ही आश्रित होना चाहिए। तो ये सच्चा जो है वानप्रस्थ धर्म कहलाता है। तो एक व्यक्ति जो है पूरी तरह भगवान के ऊपर निर्भर होता है, उसके पश्चात जो है उसकी पत्नी जो है वो अपने घर चली जाती है और वो अपने परिवार में रहती है। तो कृपा जी आगे और एक तात्पर्य बताते हैं कि इस भौतिक जगत में देखा जाता है कि बड़े बड़े लोग हैं जब ये जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं या अपना बिजनेस भी चला रहे। प्रभुपाद जी एक जगह महात्मा गांधी जी का उल्लेख करते हैं, वो कहते हैं कि महात्मा गांधी 78 साल के हो गए फिर भी वो पॉलिटिक्स से दूर नहीं हो रहे। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि थोड़े लोग हैं वो जब तक उनको कोई या तो हटाता नहीं या गोली से नहीं मारता है वो अपनी सत्ता को नहीं छोड़ते। तो जब भी प्रभुपाद जी इलाहाबाद में रहते थे तो वहां एक ऐसे एक बिजनेसमैन थे, तो उनका काफी बड़ा बिजनेस था। तो एक बार वो काफी ये थे बीमार थे, तो उनके घर में डॉक्टर आए थे, प्रभुपाद जी भी वहां थे। तो व्यक्ति बिजनेसमैन डॉक्टर से कह रहे थे मुझे 3 साल की आयु दे दो, मेरे इतने सारे बिजनेस पड़े हुए हैं उनको मुझे खत्म करना है, उनको मुझे पूरा करना है ताकि मैं अपने बच्चों को सौंप के मैं बाद में मर सकता हूं। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब भी एक व्यक्ति का काल आता है, एक व्यक्ति की मृत्यु आती है तो बता के नहीं आती। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि 50 साल के बाद में एक व्यक्ति को जीने की तमन्ना नहीं रखना चाहिए। 50 साल हो गया तो एक व्यक्ति को नहीं सोचना चाहिए अरे अगर कल हम जिएंगे, एक व्यक्ति को हर दिन सोचना चाहिए चलो आज मेरा जीवन का आखिरी दिन है, तो इस प्रकार एक व्यक्ति को अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। लेकिन आजकल लोग 50 साल के बाद में रिटायर होते हैं, आजकल गवर्नमेंट का है 60-65 ईयर्स रिटायरमेंट, उसके बाद में जो भी पैसा मिलता है फिर एक अपना सपने का घर बनाते हैं, उसके अंदर एक झूला होता है, झूले के अंदर झूलते रहते हैं आगे पीछे ऊपर नीचे, लेकिन वो झूला कहीं लेके नहीं जाता। उनको लगता है कि हम इस घर में शाश्वत रहेंगे, तो ये बड़े दुख की बात है। तो वास्तविक में एक व्यक्ति को जो प्रभुपाद जी बताते हैं कि ऐसे चीज इसमें अपना समय व्यर्थ गंवाना नहीं चाहिए, एक व्यक्ति को भक्ति में जो है ज्यादा आसक्त होना चाहिए और भगवान के नाम लेने में ज्यादा रुचि पैदा करना चाहिए। जैसे चैतन्य महाप्रभु बताया करते थे जीवे दया नामे रुचि वैष्णव सेवा, तो हमें जैसे हम लोग वानप्रस्थ की तरफ बढ़ते हैं तो हमें नाम के प्रति, भगवान के नाम के प्रति वो रुचि बढ़ाना चाहिए। तो प्रभुपाद जी बताते हैं अगर एक व्यक्ति अगर वो भगवान के नाम के प्रति अपना उसकी आसक्ति नहीं बढ़ती तो इसका मतलब है उसके अंदर कोई वैराग्य की भावना नहीं आ रही। तो लेकिन कलयुग में इतना आसान नहीं है। तो भक्तिवेद ठाकुर भी बताते हैं कि अगर एक गृहस्थ अपने घर में अच्छी तरह भक्ति कर रहा है तो उस व्यक्ति के लिए घर भी जो है एक वैकुंठ के समान है। वो बताते हैं जे दिने गृह भजन देखी गृह ते गोलोक भाए, तो घर भी जो है गोलोक के समान बन जाता है अगर हम अपने घर में सब लोगों को भक्ति में लगा देते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जब वो दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे थे तो भी उन्होंने किसी को कहानी की चलो घर छोड़ो हमारे पीछे चलो, उन्होंने ऐसे किसी को कहानी यार देके तार कह कृष्ण उपदेश। एक ब्राह्मण थे कुर्म ब्राह्मण, वो भी चैतन्य महाप्रभु के साथ जाना चाहते थे, तो उन्होंने कहा नहीं आप अपने घर में रह के अपनी भक्ति करो। तो अभी प्रभुपाद जी बताते हैं अगर एक व्यक्ति को अपने घर में अनुकूल स्थिति नहीं है तो उसको अपना घर त्याग देना चाहिए। अगर एक व्यक्ति को घर में अनुकूल स्थिति है तो एक व्यक्ति कलयुग में घर में रहकर की भक्ति कर सकता है। फिर यहां जो है और एक शब्द इंपॉर्टेंट शब्द का उल्लेख है ब्रह्म तेज। तो ये ब्रह्म तेज का रूपा जी बताते हैं कि ब्रह्म तेज का अर्थ होता है कि जो ब्राह्मण लोग होते हैं वो अपने भक्ति के द्वारा अपने शरीर के अंदर जो एक प्रकार का प्रकाश ब्रह्म तेज को जो उत्पन्न करते हैं वो उनकी शक्ति है। तो एक ब्राह्मण की शक्ति किसके अंदर होती है, उनके तपस्या के अंदर होती है। तो वो जो है उस शक्ति से वो कुछ भी जो है कर सकते, कोई भी कार्य कर सकते। तो श्रीमद् भागवतम में ये वेण का उल्लेख आता है, ये राजा वेण जो अंग का पुत्र था, तो वेण को जब राजा बनाया गया था उन्होंने एक अच्छे उन्होंने ये सोचा कि ये अच्छा राजा बनेगा, लेकिन वो उल्टा ही बोलने लग गया। वो ब्राह्मणों को कहने लगा अरे आप लोगों को मेरी पूजा करना चाहिए, आप जो है देवताओं की पूजा कर रहे हैं, आप जो है एक जो पत्नी होती है जो असती जो चेष्टनी होती जो पतिव्रता नहीं होती, आप ऐसे आप जो पति जो पतिव्रता स्त्री नहीं इस प्रकार है। तो ये वेण है वो काफी ब्राह्मणों को तकलीफ देने लग गया। तो फिर ब्राह्मणों ने क्या किया अपने उनके ब्रह्म तेज से वेण को सिर्फ मंत्र के द्वारा उसको मार डाला। तो पुराने जब हम देखते हैं कि अन्य युगों में जितने भी ब्राह्मण होते थे वो उनके अंदर पूरी शक्ति होती थी और वो किसी को भी जो है उनको अस्त्र पकड़ने की कोई जरूरत नहीं होती थी। जैसे महाभारत में हम देखते हैं कि जब विश्वामित्र मुनि है वो असुरों को खुद मार सकते थे, जैसे ताड़का है ये राक्षसी को विश्वामित्र मार सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया राम लक्ष्मण को लेके गए उनको मारने के लिए। तो ऐसे विश्वामित्र और वैशिष्ट इनके अंदर हर समय झगड़ा चलता रहता था। एक बार विश्वामित्र जो है वैशिष्ट की गाय लेके जाना चाहते थे, लेकिन उस वक्त जो है वास्तविक में विश्वामित्र जो है उनके गाय ने अपने एक ब्राह्मण का जो है ताकत दिखाया। तो ये महाभारत में इसका पूरा उल्लेख आता है कि जैसे श्रृंगी रूपा जी बताते हैं एक बच्चा था ब्राह्मण का छोटा बच्चा था, लेकिन उसने गलती से जो है इनको जो है परीक्षित महाराज को श्राप दे दिया, लेकिन उनके पिताजी को बड़ा खेद हो गया अरे मेरे मूर्ख पुत्र ने जो है इनको गलती से श्राप दे दिया। तो पहले जमाने में ब्राह्मणों के बच्चों में भी एक जो है उतना ही शक्ति होता था। और ऐसे भागवतम में जो है एक उल्लेख आता है जैसे वैशिष्ट और जो है एक राजा निमित है, तो इनका भी उल्लेख आता है कि इन्होंने एक दूसरे को श्राप दे दिया और एक दो, दो दोनों मर गए। तो पुराने जमाने में देखते हैं कि ये जो जितने भी ब्राह्मण होते थे वो अपने ब्रह्मते से बहुत सारे यज्ञ करते थे, यज्ञ में जितने भी पशु को वो ये करते थे उनकी बलि देते थे, वो पशु जो है उनको नया जीवन मिल जाता था। तो लेकिन वो अपना जो शक्ति है गलत इस्तेमाल नहीं करते थे। तो यहां जो है आज के इसमें उल्लेख आता है क्रतु और उसकी जो पत्नी क्रिया, इनके द्वारा जो 60,000 जो पुत्र थे वो लोग क्या बन गए, ऋषि बन गए। फिर वो उन्होंने गृहस्थ आश्रम स्वीकार करने के पश्चात उन्होंने वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार किया और उनका शरीर जो है वो ब्रह्म तेज से बिल्कुल जो है प्रकाशमान था। तो प्रभुपाद जी ये बता रहे क्योंकि उन्होंने गृहस्थ जीवन के पश्चात वानप्रस्थ स्वीकार कर लिया। हरे कृष्णा। किसी को ये टीका है, प्रश्न है तो प्रश्न कर सकते हैं। हाँ, किसी को भी प्रश्न है, टीका है। हाँ, ये जो है ये कलयुग का प्रभाव है। अगर आप मनु संहिता पढ़ेंगे तो उसमें एक लड़की की किस साल में शादी करना चाहिए, एक लड़के की कब शादी करना चाहिए, ये पूरा एक साइंस है। जैसे मैं गोवा में जाता हूँ प्रचार के लिए तो वहां लड़कियों की शादी 25-30 साल की होता है लेकिन उनको कैंसर हो जाता है। इंडिया में सबसे ज्यादा कैंसर गोवा के लोगों को होता है, खास करके लेडीजों को। तो हमारा शरीर जो है उसका भी एक डेवलपमेंट स्टेज होता है। तो प्रभुपाद जी आप देखते हैं कि प्रभुपाद जी का भी जब उस समय जैसे ब्रिटिश लोगों ने, ब्रिटिश लोग तो आप लोग जानते हैं कि उन्होंने जो है समझा कि ये गलत है, लेकिन उनको इतना ज्ञान नहीं शास्त्र का। तो उन्होंने जो है देखा कि वो कहते कि जो जो शिशु विवाह है तो इसके बहुत सारे लाभ है, इसमें कोई ये नहीं है, गलत नहीं है, ये भी एक साइंस है। तो प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में बताते हैं कि पहले जमाने में क्या होता था कि एक लड़की को पता चलता था कि हाँ ये मेरा पति है, वो अपना दिल और किसी से नहीं देते थे, समझ रहे, वो जो है और अपना मन और दूसरी तरफ नहीं लगाते थे। क्योंकि वो लड़का कोई भी त्योहार होता था वो घर में आता था तो उसकी माता कहती थी चलो उसको जाके खिलाओ, उसके लिए पानी ले जाओ, भोजन ले जाओ, तो उसको पता चलता था ये मेरा पति है। तो जब ये लड़का लड़की बड़े हो जाते थे वो फिर उनका फिर विवाह होता था, फिर वो एक साथ रहते थे पति पत्नी बन के। तो लेकिन आजकल कलयुग में ये जो है कोई फॉलो नहीं करते। जैसे आजकल जैसे कोई एक व्यक्ति पढ़ रहा है, जैसे एक व्यक्ति डॉक्टर भी बनता है तो एक व्यक्ति को डॉक्टर का पीजी करते करते 35 यानी आधा जिंदगी चला गया। तो 35 साल तो एक व्यक्ति को अपनी डिग्री खत्म करने में लगते। और थोड़े लोग वो ये सोचते हैं कि लड़कियों को भी वास्तविक में पढ़ाना चाहिए। तो हर एक व्यक्ति का अलग अलग सोचने का ढंग है, लेकिन शास्त्र में जो बताया गया है वो वेद वाक्य है, उसमें कोई गलती नहीं है। तो अभी जो भी दुनिया में लोग कर रहे हैं वो अपने अपने दिमाग के अनुसार कर रहे हैं, लेकिन जो वास्तविक एज जो है वो आजकल गवर्नमेंट ने भी अलग अलग एज रिस्ट्रिक्शन रखा है, तो उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। हरे कृष्ण, काफी धन्यवाद। हरे कृष्ण। गंत्रा श्रीमद्भागवतम की, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।